हालेलुया। यही हमारी हर रोज दुआ होनी चाहिए कि खुदावन खुदा मेरी जिंदगी के उन तमाम तूफानों में, उन तमाम मुश्किलात में, उन तमाम परेशानियों में, उन तमाम खुशहालियों में, चाहे जिंदगी में कैसे भी हालात हों, हमें ये बात भूलने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह ही है जिसका हाथ कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता, जिसका हाथ कभी भी छोटा नहीं होता और जिसके हाथ में कभी भी कुव्वत कम नहीं होती कि बचा ना सके, और जिसका कान दूसरे माबूदों की तरह, जिस तरह बाइबल मुकद्दस बताती है कि बाल के पुजारियों ने पीटना शुरू कर दिया, अपने को काटना और फिर मारना शुरू कर दिया, और एलिया नबी ने कहा कि जोर से चलाओ, जोर से पुकारो कि शायद तुम्हारा देवता सोता हो। लेकिन हमारा खुदा ना सोता है, ना ऊँघता है, ना थकता है, ना बीमार होता है और ना ही वो बहरा है, क्योंकि वो अपने मांगने वालों की दुआओं को सुनता है। हालेलुया। आए उस खुदा के हुजूर झुकें। आज आपकी जो भी उम्मीद है, जो भी आस है, जो भी दुआ है, आज उसके खेत में बोएं। और इस बात को याद रखें, क्योंकि खुदा आपका हर एक लम्हा अपनी किताब में लिख रहा है। वो इस वक्त को अपने हजूर याद कर रहा है, दर्ज कर रहा है। सो आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और अपनी उम्मीदों को, अपनी आसों को, अपनी दुआओं को, अपने दरख्वास्तों को उसके हजूर पेश करें। हालेलुया। खुदावन खुदा, मेरी आस है कि मुल्क पाकिस्तान में तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। इस दुआ को सुन खुदावन खुदा, और मेरी दुआ है कि इस कलीसिया में से नौजवान बहनें, नौजवान भाई, बुजुर्ग तेरे कलाम को तेरी रजा के मुताबिक, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक खुदावन जाने और इस दुनिया में, इस बेदीन ज़माना में खुदावन तेरे लिए खुदावन खुदा गवाह ठहरें। आज के पैगाम के वसीला से खुदावंद, आज हम जो कुछ भी सीखें, हम सबको कुव्वत और ताकत दे के हम मांगना सीख जाएं, हम ख्वाहिश करना सीख जाएं, हम तुझसे उम्मीद रखना सीख जाएं। और ये पैगाम मेरे लिए आए हुए तमाम बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए और जो मुस्तकबिल में इस पैगाम को सुनेंगे, बरकत का बायस ठहरा। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो रहे हैं, आवाज नहीं आई। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी सो रहे हैं। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 18वीं आयत। सो जो बहन, भाई, बच्चे बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं, उनके पास कोई भी वजह नहीं कि ना पढ़ें, इसलिए बाइबल मुकद्दस मौजूद है, ज़रूर पढ़ें। सो इफ़सियों पहला बाप, उसकी 18वीं आयत, और यहाँ पर हम सीख रहे हैं, और तुम्हारे दिल की आँखें ताकि तुमको कि उसके बुलाने से कैसी कुछ और उसके मेराज के जलाल की दौलत मकसों में कैसी कुछ है। यहां पर हम सीख रहे हैं उम्मीद के बारे में कि खुदा ने हमें बुलाया है, उसने हमें ये उम्मीद दी है कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के आपको अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था, मैं तुम्हें यतीम और तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने शागिर्दों से अलहदा होने से पहले क्या कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है कि खुदावंद मेरे साथ है। आप जब क्रिसमस आ रहा है तो आप इस हवाला को पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका पहला बाप, उसकी 22वीं और 23वीं आयत में इस आयत को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उसके गुनाहों से निजात देगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। सो खुदावंद यीशु मसीह में हमें कामल उम्मीद है, कल जैसे हमने सीखा। दूसरे लोगों की अमीर जाती रहेगी क्योंकि वो आरजी हैं, लेकिन हमारी अमीर कायम रहेगी जिस तरह के खुदा कायम है। आज मेरी दरख्वास्त है, आज मेरी ये आपसे कह सकता हूं कि उम्मीद है कि आप, अगर पहले आपने कभी नहीं मांगा, पहले आपने अभी पहले कभी भी उम्मीद नहीं की, तो उससे मांगना शुरू करें किसी ना किसी चीज़ की जो भी आपके जहन में, आपकी रूह में, आपकी ज़िंदगी में है कि खुदावन खुदा मुझे ये चाहिए, उसके हजूर उससे मांगे। मांगे वो जवाब देगा, चाहे 5 साल में, चाहे 1 साल में, और चाहे वो 1 मिनट में, क्योंकि वो खुदा ऐसा कर सकता है। और ये बात बिल्कुल सादा सी है, जब तक आपका बच्चा आपके घर में आपसे रोटी नहीं मांगता, आप यही समझते हैं कि उसे ज़रूरत नहीं, हालांकि जानते हैं कि वो इस वक्त पर रोटी खाता है। इसी तरह खुदा कुल इल्म रखता है, वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उससे मांगें। ये खुदा का हुक्म है, मांगो, ये खुदा का हुक्म है, और ये हुक्म के साथ खुदा का वादा है, जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, ये खुदा का वादा है। सो पहली बात जो हम सीख रहे हैं, उम्मीद, कैसी कुछ उम्मीद है। आपकी और मेरी उम्मीद बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमें खुदा के हुजूर मांगना चाहिए। आपको याद होगा अलीशा नबी का दौर, जब अलीशा ने दुआ की तो उसने कहा कि खुदा मुझे एलिया से दुगना मसा दे। क्या कहा उसने? एलिया से दुगना मसा दे। एलिया ने 7 मोजजात किए, 7 मोजजात, यानी कि ऐसे ऐसे अजीब काम किए जो इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जब अलीशा को खुदा ने दुगना मसा दिया, तो अलीशा नबी ने 14 14 मोजजात किए। हम भी उससे मांग सकते हैं, और बाइबल मुकद्दस कहती है मांगना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। इसलिए उम्मीद का मतलब है आस करना, उम्मीद का मतलब है यकीन करना, उम्मीद का मतलब है किसी से मांगा है तो एतबार कर लेना कि वो मेरी उम्मीद के मुताबिक मुझे जवाब देगा। इसलिए मेरे साथ एक हवाला निकालें, नए अहदनामा में से पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 15वां बाप। 15वां बाप हमें क्या सिखाता है? 15वें बाप में जो भेद, जो बातें हमें बताई गई हैं, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 15वां बाप, उसकी 4 आयत हमें क्या बताती है? कि ये जो किताब है, जिसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, जिसे हम खुदा का कलाम भी कहते हैं, जिसे हम खुदा की अकल भी कहते हैं, जिसे हम खुदा का मुकाशफा भी कहते हैं, जिसे हम खुदा का एलहाम भी कहते हैं, जिसे हम खुदा की सांस भी कहते हैं, ये हमसे क्या बयान करती है? क्यों तमाम लोगों का खुदा ने जिक्र किया बाइबल मुकद्दस में? क्यों खुदा को जरूरत पड़ी कि ये किताब बाइबल मुकद्दस हमें दी जाए? आए देखिए क्या कहता है खुदा का बंदा पालूस रसूल, रोमियो 15वां बाप, उसकी 4 आयत। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं, वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, यानी कि वो तमाम पदेश से लेकर मलाकी नबी के सहीफा तक, मत्ती की किताब से लेकर रोमियो के खत तक, और जितनी पहली किताबें और बाद में किताबें लिखी गईं, वो कहता है जितनी भी किताबें, जितनी भी कहानियां, जितने भी वाकयात, जितने भी हालात, जितनी भी मुश्किलात, जितने भी लोगों ने मुसीबतों का सामना किया, वो किस लिए लिखी गईं? इसलिए लिखी गई, गौर से सुने, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। क्या लिखा है? ताकि सब्र से, मेरे साथ कहें, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। तमाम वाकयात जो लिखे गए हैं इसलिए ताकि हमारा सब्र मजबूत हो। तमाम बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम इन बातों को जानें, सीखें, तालीम हासिल करें, ताकि हमारी तसल्ली हो, ताकि हमें सुकून मिले, ताकि हम इत्मीनान हासिल कर सकें कि ये मेरे ही साथ नहीं हो रहा कि अगर मेरे कारोबार में कमी है। बाइबल मुकद्दस कहती है वहां पर एक बेवा थी जो अपने बच्चों को बेचने वाली थी, लेकिन अलीशा नबी आया और उसने कहा कि बर्तन लेकर आ, और उसने उन बर्तनों पर बरकत डाली और उसकी कुप्पी का तेल वो इतना भर गया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। और उसने अपने बेटों को क्या किया, उस मालक के हाथ से बचा लिया जो उनको खरीद कर गुलाम बनाना चाहता था। हो सकता है आज आप बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में हो, आप देख सकते हैं कि आपका कारोबार खराब हो गया है, घर का निजाम खराब हो गया है, आप सोचते हैं कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, आप सोचते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर गिर पड़ा है। अय्यूब नबी को देखें, दुनिया में उस वक्त में, अब से लेकर उस वक्त तक गिन सकते हैं तो वो अमीर आदमी था, माली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, यानी कि पैसे रुपए पैसे के लिहाज से भी और फिर खुदा के साथ रिश्ते में भी। सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया, लेकिन खुदा ने उसे क्या किया, दुगना वापस किया। सब कुछ खुदा ने उसे दुगना वापस किया। इससे क्या हम हासिल करते हैं, तसल्ली, तसल्ली कि खुदा अगर अय्यूब को वापस कर सकता है तो एक दिन आएगा कि वो हमसे भी भला काम करेगा, वो हमसे भी भलाई पैदा करेगा। इसलिए हमें उम्मीद रखने की जरूरत है, और हमारी उम्मीद, हमारी आस, जिस तरह अय्यूब की उम्मीद और आस जिंदा थी, हमें भी जिंदा उम्मीद और आस रखने की जरूरत है। हमें घबराने की जरूरत नहीं मांगते वक्त, ये ना कहें कि खुदा से मैंने गाड़ी मांग ली है, और खुदा ऐसा खुदा नहीं कि जो दे नहीं सकता। आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ा हूं, मैंने खुदा से मांगना शुरू किया और खुदा से दुआ करना शुरू की और खुदा से कहा कि खुदावंद अगर तूने मेरी जिंदगी के लिए मेरी बीवी कहीं पर रखी है तो खुदावंद खुदा उसे मेरी जिंदगी में भेज। आप सब इस कहानी से वाकिफ होंगे कि मेरी बीवी कैरी अमेरिका से आई, ना जिसे मैं पहले जानता था, ना कभी किसी तरह उससे बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना देखा। खुदा ने उसे मुल्क अमेरिका से यहाँ पर भेजा, हजारों 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 किलोमीटर का सफ़र करके वो यहाँ पर आई, और जब मैंने उसे देखा तो खुदा के पाक रू ने कहा कि ये तेरी वो दुआ का जवाब है, अब देख ले। हमें उम्मीद करने की जरूरत है। हो सकता है आपकी ये दुआ हो सकता है जिस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी में जवाब दिया, आपकी जिंदगी में जवाब ना दे। मेरी दुआ का जवाब उसने 26-20 साल में दिया, आपकी दुआ का जवाब हो सकता है 1 महीने में दे दे, हो सकता है 1 साल में दे दे, 10 साल में दे दे, लेकिन उम्मीद रखने की जरूरत है, क्योंकि अय्यूब की उम्मीद जिंदा थी, उसने खुदा पर नजर की और वो जिंदा उम्मीद में कायम रहा। मेरे साथ एक हवाला देखें, हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। अय्यूब की किताब उसका 19वां बाप, अय्यूब की किताब उसका 19वां बाप, यहां पर अय्यूब नबी दुखों से भरा हुआ है, अपने बच्चों को खो चुका है, अपना कारोबार, उसके नौकर चाकर सब कुछ तबाहो बर्बाद हो चुका है, और उसकी बीवी भी उसे कह रही है कि खुदा पर लानत कर। उसके बाद उसके दोस्त आकर उसको आजमाते हैं और उसके दोस्त उसको कहते हैं कि तूने कोई ना कोई गुनाह किया है, इसलिए खुदा तुझसे नाराज है, तू फना हो जाएगा, तू कभी भी जमीन पर याद नहीं किया जाएगा, तेरा कोई नाम और निशान नहीं रहेगा, तुझसे कोई यादगारी वापस नहीं, तेरी कोई भी यादगारी इस जमीन पर नहीं रहेगी। सो 19वें बाप में अय्यूब नबी की उम्मीद, अय्यूब नबी का यकीन, अय्यूब नबी का भरोसा देखते हैं। और क्या कहता है अय्यूब नबी, 19वां बाप उसकी 25वीं आयत, यहां पर वो कहता है, अय्यूब कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, यानी कि मेरा बचाने वाला, मुझे रहाई देने वाला, मुझे मुश्किलात से निकालने वाला जिंदा है, वो मुर्दा नहीं। और आखिर को मैं जमीन पर खड़ा होऊंगा, और आखिर को वो जमीन पर खड़ा होगा। यहां पर वो बात कर रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो एक दिन आएगा और जमीन पर खड़ा होगा और अपने लोगों को जिसने उससे उम्मीद की होगी उनको बदला देगा। यहां पर अय्यूब नबी जो बात कर रहा है हजारों 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 साल पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा हो, वो जानता था यीशु मसीह के बारे में। और 26वीं आयत में क्या कहता है, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में खुदा को देखूंगा। यहां पर वो अपने जिस्म पर देखता है, फोड़ों से उससे रेशा निकल रहा है, उससे कीड़े, उससे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और वो कहता है कि मैं अपनी खाल यानी कि अपने जिस्म के इस तरह बर्बाद हो जाने के बायस भी, हम उस नज़ारे को बयान नहीं मैं कर सकता कि किस तरह बयान करूं, सारा जिस्म कहता है फना हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं खुदा को देखूंगा, ये उसकी उम्मीद है। अगर आज आप किसी तरह की परेशानी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, तकलीफ में हैं, तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं। किताबे मुकद्दस इसीलिए लिखी गई है कि हम सब्र हासिल करें, इसीलिए लिखी गई है कि हमें इत्मीनान मिले, इसीलिए हमें किताबे मुकद्दस दी गई है कि अय्यूब की ज़िंदगी में, पालूस की ज़िंदगी में और अय्यूब की ज़िंदगी में देखें कि उसने जिस खुदा को कभी देखा नहीं उस पर यकीन किया। फिर हमें कौन सी बात रोकती है कि अपनी मुश्किलात में कहें जैसे अय्यूब की बीवी ने कहा कि खुदा पर शिकायत कर, लानत कर और मर जा। जब आपको दुख आए, आपको राज की बात बताना चाहता हूँ, खुदा की परस्तिश करें, खुदा का शुक्र करना शुरू करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस लायक जाना कि मैं तेरे नाम की खातर मुसीबत और दुख उठाऊं। मैं जानता हूं कोई भी दुख को पसंद नहीं करता, बीमारी को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर खुदा हमारी जिंदगी में बीमारी, परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ या किसी चीज का खो जाना या नुकसान लाता है, तो ये इसीलिए है कि उसका कुछ ना कुछ मकसद है। जिस तरह आज हम अय्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि उसके दोस्तों ने कहा था कि कोई भी तुझे याद नहीं करेगा, लेकिन आज अय्यूब की जिंदगी तमाम नस्ल इंसानियत के लिए मिसाल है। आपकी जिंदगी भी मिसाल हो सकती है कि फलां बाजी ने सारे दुख में खुदा को नहीं छोड़ा, फलां बाबा जी ने, फलां चाचा जी ने अपनी तमाम मुसीबतों में यीशु मसीह पर यकीन किया, हालांकि वो बीमारी की हालत में इस दुनिया से भी चला गया, लेकिन उसने अपना यकीन और उम्मीद खुदा से रखी। फलां बेटी 20 साल से 25 साल से औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा की परस्तिश कर रही है, ये क्या है, मिसाल है। हाँ खुदा तेरी मर्जी है, अगर तूने नहीं दिया तो फिर भी मैं तेरी परस्तिश करूंगी, ये नहीं कहूंगी कि तूने मुझे नहीं दिया इसलिए तू कौन खुदा है और मैं तुझ पर लानत करूंगी। हमें ऐसा नहीं बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए हर हालात में। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।